जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
तो रघुनाथ दास गोस्वामी का और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो लीला है वो चैतन्य चरितामृत के अंत लीला अध्याय 6 में उसका विशद वर्णन किया गया है। कृपा गुणई जहा कुगृहे अंधकूपात उद्धारित्य भंग्या रघुनाथ दासम न्यस्यस्य स्वरूपे विदधे अंत अंगम श्रीकृष्ण चैतन्यम अमुम प्रपद्ये कृपा गुणय कुगृहा कुपंद कृपा गुणय कुगृहांध कूप उद्धारित भंग्या रघुनाथ दासम नस्य स्वरूपे विदधेऽन्तरंग श्रीकृष्ण चैतन्यममु प्रपद्ये तो अंग्रेजी में बोलता हूं विद द रोप ऑफ हिज काउजलेस मर्सी श्री चैतन्य महाप्रभु इंप्लॉयड ए ट्रिक टू डिलीवर रघुनाथ दास गोस्वामी फ्रॉम द ब्लाइंड वेल ऑफ कंटेम्पटेबल फैमिली लाइफ ही मेड रघुनाथ दास गोस्वामी वन ऑफ हिज पर्सनल एसोसिएट्स Placing him under the charge of Sarup Damodar Goswami, I offer my respectful obeisances unto him. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurjini Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितने लोग हिंदी समझते हैं? हाथ उठाओ तो ठीक है। आगे वाले नहीं, पीछे वाले। कितने लोग हिंदी समझते हैं? पीछे वाले तो आगे आ जाओ सब। जगन्नाथ बलदेव अब आगे आओ। वो अनुवाद अंग्रेजी के लिए हो रहा है तो आप लोग वहां क्या करोगे? अंग्रेजी पढ़ोगे क्या? तो यह जो श्लोक है, इस श्लोक में एक बात देखने को मिलती है। कृपा गुणई यह कुरु गृह अंधकूपा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी पर कृपा करने के लिए, जो कि अंधकूप में पड़े हुए थे। कुगृह अंधकूप, क्या ही यहां पर शब्द का वर्णन किया गया है। अंधकूप का मतलब है वह घर गृहस्थी जो खराब है, लेकिन यहां पर कुगृह अंधकूप और खराब, अब उससे खराब क्या हो सकता है। बहुत दयनीय परिस्थिति थी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। जो व्यक्ति घर गृहस्थी में पड़ा हुआ है, अंधकूप में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी इच्छा है भगवान का सेवा करने के लिए, तो उसके लिए यह चरित्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भगवान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर, षट गोस्वामियों में से एक हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और दूसरे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी साउथ इंडिया के हैं, वेंकट भट्ट के पिता, और रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल से हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी पर कृपा करने के लिए उन्होंने यह उपाय किया। इसमें दो चीज देखा जाता है। एक तो उपाय यह है कि उन्होंने महाप्रभु रघुनाथ दास का उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु को प्रेरित किए, जो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को आदेश दिए एक चूड़ा दही फेस्टिवल का महोत्सव मनाने का। जो भी व्यक्ति घर गृहस्थी से बाहर निकलना चाहता है या घर गृहस्थी में रह करके भी खुश रहना चाहता है, उसको चाहिए कि वैष्णवों को प्रसाद खिलाए। ये तरीका है घर गृहस्थी से बाहर निकलने का, चाहे घर गृहस्थी में रह करके सुखपूर्वक रहना चाहते हो, दोनों का साधन है वैष्णवों को प्रसाद खिलाना। बुला बुला करके वैष्णवों को प्रसाद खिलाना चाहिए, और खिलाने का तरीका भी बताया गया है कैसे खिलाना चाहिए वैष्णवों को, वो भी बताया गया है। इस क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे और अंत में वैष्णवों का जो उच्छिष्ट होता है वो ग्रहण करना चाहिए। माताजी लोग आप जप मत करो, कुर्सी पर जो बैठी हो दोनों, जप करने का मतलब होता है सुनना और कथा सुनने का मतलब होता है सुनना, तो एक साथ कैसे होगा। ये नमापराध में दसवां अपराध है, नॉट बी अटेंटिव, मतलब अटेंटिव नहीं हो चैंटिंग में। आप लोग जपो करोगे सुनो कहां, सुनोगे तो जप कहां करोगे, है ना। दुम एक होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम दो अलग अलग भक्ति है। अभी श्रवण का समय है। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ वैष्णवों का उचिष्ट खाना चाहिए। भक्त पद धूलि जार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्ति में तीन बड़ा ही शक्तिशाली पावरफुल टूल है, भक्त पद धूलि, भक्तों का है चरणों का चरण रज, भक्त पद जल और वैष्णवों का पाद प्रक्षालन किया हुआ जल चरणामृत, और भक्त भुक्त अवशेष, भक्त लोग खा लिए हैं जो उच्छिष्ट है वह उच्छिष्ट भोजन, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। ये भक्ति में तीन बड़ा ही शक्तिशाली टूल है। तो गृहस्थों को हमेशा चाहिए कि अपने घर में वैष्णवों को बुलाए, ये सुअवसर प्राप्त करना चाहिए। वैष्णवों को बुलाए, उन्हें प्रसन्न भाव से प्रसाद ग्रहण कराए और उचित स्वयं ग्रहण करें, ये वैष्णव भाव है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार से रघुनाथदास गोस्वामी का उद्धार किए, और बाद में जब रघुनाथदास गोस्वामी वैराग उत्पन्न हुआ, वैराग में सर्वश्रेष्ठ हैं रघुनाथदास गोस्वामी, जिसके पास कुछ है और छोड़ता है उसे बैराई कहते हैं, जिसके पास कुछ है ही नहीं। रघुनाथदास गोस्वामी के विषय में बताया गया, अपने पिता के और चाचा के इकलौते बेटे थे और उनका मंथली इनकम इतना था कि हम सोच भी नहीं सकते। उनकी पत्नी स्वर्ग के अप्सरा से भी सुंदर थी, लेकिन वैष्णव कृपा से वे सब त्याग करके भगवान चैतन्य महाप्रभु का शरण ग्रहण किए थे। तो नित्यानंद प्रभु के द्वारा उनको घर गृहस्थी से बाहर निकाले और शिक्षा देने के लिए वे स्वरूप दामोदर की अध्यक्षता में उनको रखे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनको शिक्षा दिया। नश्य स्वरूप विदधे अंतरंगम, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो उन्होंने नश्य, उन्होंने दिया महाप्रभु ने किसको, स्वरूपे स्वरूप दामोदर को। वैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वे चैतन्य महाप्रभु हम पर कृपा करें। किनके साथ में, रघुनाथदास गोस्वामी और स्वरूप दामोदर के साथ में। स्वरूप दामोदर के विषय में बताया गया है यहां पर, इंद्र रॉय स्वर स्त्री अवसरा सौम जेसव बांधिते नारिलिक जार मौन। उनके पास जो स्वर्य था वो इंद्र के समान था और उनकी पत्नी जो थी वो अप्सरा के तुल्य थी। तो उनके पिताजी कहते हैं उनके माताजी से कि इंद्र जैसा ऐश्वर्य और अप्सरा जैसी पत्नी, जब दो इसको नहीं बांध सकते हैं तो इसके मन को कौन बांध सकता है, ये पागल हो गया है। यह पागल हो गया है चैतन्य महाप्रभु के कृपा से। इस पर चैतन्य रूपी भूत सवार हो गया है, चैतन्य महाप्रभु रूपी भूत सवार हो गया है, पागल हो गया है। तो इसको कौन संभाल सकता है, कोई नहीं बांध सकता है, तो इसका हाथ पर बांधने से कोई फायदा नहीं। उनकी माताजी ने कहा कि भाग जाता है बार बार, इसका हाथ पर बांध करके रखा जाए, का कौन बांध सकता है। संसार में कंचन और कामनी दोनों बांधने के तरीके हैं, जब ये दोनों नहीं बांध सकते हैं तो हम कौन होते हैं बांधने वाले। इस प्रकार से बाप मां कहे चलो जाओ हरे कृष्ण डिवोटी बन जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ दिए। चैतन्य चंदेर कृपा जहां ते, चैतन्य चंद्रेर कृपा हांछे ल इहारे चैतन्य र चंद्र बातुल के राखीब पारे बातुल। बातुल मीन्स मैड मैन। चैतन्य महाप्रभु जिसके ऊपर सवार हो गए, पागल हो गया, इसे कौन बांध कर रख सकता है। तो इस प्रकार से बाप मां थक गए, कह जाओ कोई बात नहीं, जैसे हम लोगों के बाप मां थक गए, क्या करें, जाओ खुश रहो। कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं, कुछ लोग कहते हैं खुश नहीं रहेगा तो फिर आ जाना, आशा रखते हैं कि आ जाएगा शायद। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा तो परमिशन मिल गया बाप मां से, अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक प्लान किया। तबे रघुनाथ की छू बिचारी लमोने नित्यानंद गोसाईं पासे चली ल आर दिने। इस प्रकार से उनके मन में एक विचार आया कि अब नित्यानंद प्रभु के चरणों में चलना चाहिए। नित्यानंद प्रभु बड़े ही दयालु हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार हैं, महावदान्य हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु महामहावदान्य हैं। जगाई मधाई में आप लीला में देख सकते हो, महाप्रभु सुदर्शन चक्र उठा लिए थे, नित्यानंद प्रभु को चोट लगा था, फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्षमा कर दीजिए। परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद्र, भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विषय में बहुत वार्ता की गई है, उसमें भी नित्यानंद प्रभु अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, नित्यानंद प्रभु बड़े ही दयालु हैं, इसलिए उन्होंने निर्णय किया रघुनाथ दास गोस्वामी कि हम नित्यानंद प्रभु के का शरण ग्रहण करेंगे। और ऐसा निर्णय करके वे नित्यानंद प्रभु के शरण में गए। नित्यानंद प्रभु बंगाल में ही निवास करते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब निवास करते थे तो बंगाल के भक्तों से रहा नहीं जाता था, वे भाग भाग करके चले जाते थे जगन्नाथपुरी। तो नित्यानंद प्रभु को बुला करके चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया सभी बंगाल के भक्तों को, सभी भक्तों को, कि आज के बाद तुम लोग कभी जगन्नाथपुरी मत आना, जब रथ यात्रा होगी तो उस समय आ सकते हो, नहीं तो तुम लोग मत आना। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहता है उसको चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में इसको आप पढ़ सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन परपट में प्रभुपाद जी लिखे हैं, कहते हैं बहुत से भक्त सेंटिमेंटल हैं, मायापुर वृंदावन जगन्नाथपुरी घूमना चाहते हैं, भटकते रहते हैं, वहां निवास करना चाहते हैं, लेकिन वे लोग चैतन्य महाप्रभु को खुश नहीं कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को वह खुश कर रहा है जो उनका आदेश पालन करता है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहा कि मैं तो अब इधर आ गया, बंगाल में प्रचार कौन करेगा, तो पूरे बंगाल का जीबीसी बना दिया नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु, कि आप उधर ही रहो। और इस प्रकार से गांव गांव जा जा करके नित्यानंद प्रभु बंगाल में प्रचार करते थे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी निर्णय किए कि वे मिलेंगे नित्यानंद प्रभु से, तो खुदा न खास्ते भगवत कृपा से उस समय नित्यानंद प्रभु बंगाल के ही एक पानी हाटी कलकत्ता से उत्तर मायापुर से कोने में पश्चिम और दक्षिण के कोने में है गंगा किनारे, तो पानी हाटी गांव में भगवान श्री नित्यानंद प्रभु आए हुए थे। और वे अकेले नहीं थे, उनके साथ में बहुत से भक्त लोग थे, 20-25 भक्तों की टोली लेकर के सब लोग प्रचार करने जाते थे। प्रभुपाद जी इसी क्रम में कहें कि कभी भक्तों को अकेला नहीं जाना चाहिए, जोड़ी साथ में होना चाहिए, चाहे वो लाइव मेंबरशिप प्रीचर हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे कोई हो। अकेला जाने से माया का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ सकता है। दो आदमी रहेंगे तो थोड़ा तो लज्जा बनी रहेगी, नहीं तो हमारे मेंबरशिप प्रीचर अकेला जाना चाहते हैं। क्यों? वहां टीवी चल रहा है, थोड़ा देख लें क्रिकेट में क्या हो रहा है, यही ना। दो आदमी रहेगा तो थोड़ा शर्म लगेगा। जय श्री श्री गौर निताय राधारास बिहारी की जय। माया बड़ी बलवती है, कैसे भी आ सकती है, इसलिए अकेला कभी नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य बताए हैं तत्वज्ञान उसी में। तो नित्यानंद प्रभु अकेले नहीं जाते थे। अरे उद्धव माधव कहां है? हमारा प्रीचर लोग कितने यहां पर हैं? हाथ उठाओ तो लाइफ मर्ट से प्रीचर लोग। अद्भुत। तुम्हारा पार्टनर कहां है? वो अकेला ही रहता है। मैं सब सोचे सुने थोड़ा असर पड़ेगा उस पर। जाओ थोड़ा देखो कहां जगह, उसको हेल्प करो। सुलोचन ने तो खाकर सो गए। ऐसे काशी करने से क्या फायदा? नोत पात जद यदृतिम श्रम ही केवलम। क्या फायदा? केवल श्रम है। ये सब करते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए ना, हियरिंग चैंटिंग में। तो अकेला नहीं जाना चाहिए। नित्यानंद प्रभु अकेला नहीं जाते थे, 20-25 भक्तों को साथ मिलकर जाते थे। और जबरदस्ती बुलाना नहीं पड़ता था। आजकल तो बुलाना पड़ता था, क्या प्रभु जी हेड में दर्द है, ये है वो है, कहते चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना है, तो कितने कनी काटना शुरू करते हैं। वो दौड़ करके उत्साह ना कहना पड़ता, मत जाओ रहो तुम यहां प्रचार करो, लेकिन भक्त जाते थे। तो नित्यानंद प्रभु भक्तों के साथ में आए हुए थे। और गंगा किनारे एक चबूतरे पर बैठे हुए थे, सुंदर चबूतरे पर बैठे हुए थे। और उनके मुखारविंद से दिव्य ज्योति निकल रही थी, जैसे सन सूर्य से सूर्य की प्रभा निकल रही हो। सब भक्त लोग वहां पर नित्यानंद प्रभु के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और बड़े प्रेम से नाम कीर्तन हो रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तब नित्यानंद प्रभु देखे, सोचे कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बड़े मग्न हैं भक्तों के साथ में। प्रभुनाथ दास देखे तो दूर से दंडवत प्रणाम किए। हम लोग नदी का दंडवत प्रभु, ये दंडवत नहीं होता है। दंडवत का मतलब दंडा के समान, दंडवत। हम लोग फोन पर ही दंडवत कर लेते हैं, है? मिलते भी हाँ दंडवत प्रभु, अरे हरे कृष्ण बोलो ना। दंडवत का मतलब होता है, समझ गया ना। रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर दंडवत नित्यानंद प्रभु नहीं बोले, बिना बोले ही दूर से वे दंडवत प्रणाम किए। तो कुछ भक्तों ने कहा कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं और वे आपको दंडवत कर रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु इस बात को सुने, रघुनाथ से कहीं आओ इधर आओ, चोर कहीं का, तू कहां था अब तक से, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, जब तू आ ही गया है तो आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। पर तो महा नित्यानंद प्रभु चोर क्यों कहा? क्योंकि वो डर से दूर से ही प्रणाम कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु बड़े खतरनाक हैं, वो अवधूत हैं, कब क्या करेंगे पता नहीं। तो रघुनाथ दास दूर से प्रणाम कर रहे थे, इसलिए कहा कि तू चोर है, तू मेरे नजदीक नहीं आ रहा, डर रहा है। और नित्यानंद प्रभु अपना हाथ बढ़ाए, बैठे बैठे थे, दूर थे। नित्यानंद प्रभु का हाथ जैसे हनुमान जी की पूंछ में लंका में वो बांध रहे थे ना, जितना कपड़ा बांध रहे थे बढ़ते जा रहा था। तो नित्यानंद प्रभु का हाथ अजान उलंबू ऐसे ही है, थोड़ा और बढ़ा लिए, वो तो इंडिपेंडेंट लॉर्ड है। और पकड़ लिए, पकड़ करके लाए। कुछ आचार्य ऐसे कहते हैं, कुछ कहते हैं पकड़ करके लाए। कैसे पकड़ करके लाए? और ला करके उनको अपने चरणों में पकड़ पटक दिए। तो खड़ा होकर के उठ करके जाना, पकड़ करके लाना, बैठ कर चरणों में पटकना, ये थोड़ा ये लगता है, लेकिन हाथ बढ़ा करके पकड़ करके लाना बम, वो उचित लगता है। एनीवे जैसे भी हो, उनको चरणों में पटक कर करके मानो रघुनाथ दास गोस्वामी सांगे दंडवत कर रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु अपने पैर को उनके सिर पर रखे। रघुनाथ दास गोस्वामी की कितना बड़ा सौभाग्य है, दंडवत प्रणाम किए दूर से, वो भी नित्यानंद प्रभु के भक्ति के भाजन बन गए। प्रणाम करना भक्ति है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, प्रणाम करो। प्रणाम करना चाहिए, नहीं कि दंडवत, सीधा दंडवत करो। पीला कपड़ा पहनते दंडवत करते हैं, कुछ बेचारे अर्ध दंडवत करते हैं, लाल पहनने के बाद भूल जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाती है, एडवांस हो जाते हैं तुरंत। एनीवे ये दंडवत जो था रघुनाथ दास गोस्वामी पर कृपा का भाजन बना, कृपा के भाजन में दंडवत से। महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, अब तू आ गया है तो तू चोर है, तुम्हें मैं दंड देना चाहता हूं, और दंड रहेगा कि हमारे इतने भी भक्त लोग हैं, एसोसिएट लोग हैं, बहुत नाचे गाए थक गए हैं, इनको प्रसाद खिलाओ। प्रभुपा जी कहते थे चांटिंग डांसिंग एंड व्हेन यू आर टायर्ड टेक प्रसादम, व्हेन यू आर टायर्ड, ये नहीं कि बिना नाचे गाए प्रसाद के लिए जल्दी लाइन में लग जाओ, पहले खूब नाचो गाओ पसीना निकल जाए बाद में प्रसाद खाने जाओ, ये विधि था। तो भक्त लोग नाचे गाए थक गए थे, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि सब लोगों को तुम प्रसाद खिलाओ, और कौन प्रसाद का दही चिड़ा। गर्मी का दिन था, बरसात आने से पहले तो गर्म चीज नहीं तो ठंडा चीज होना चाहिए, दही चिड़ा ठंडा होता है। जैसे उड़ीसा में वो पांता भात है, कितने उड़िया भक्त यहां पर होती है, उड़िया भक्त लोग कितने हैं, वो पोखाल भात खाते हैं ना, वो पोखाल भात पांता भात ठंडा पेट रहता है। तो ऐसे ही बंगाल बिहार में लोग दही चिड़ा खाते हैं, और ऐसे भी अभी अभी धान का खेती हुआ है, चूड़ा बनाए तो इजी लाइफ है दही चूड़ा। तो उन्होंने कहा कि दही चूड़ा खिलाओ। अब इतना सुनना था रघुनाथ दास गोस्वामी का कि मन उनका प्रस्फुल्लित हो गया, नाचने लगे कि आज मुझे वैष्णव सेवा करने का सुअवसर मिला है। वैष्णव सेवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में, विष्णु सेवा से बढ़कर के वैष्णव सेवा है। भगवान को यदि कोई प्रसन्न करना चाहता है तो वैष्णवों का सेवा करे। भगवान का जो सेवा करता है, भगवान कहते हैं हमारा वो सेवक नहीं, बदमाश सेवक, तो हमको दिखाने के लिए ढोंग कर रहा है, भगवान दिखते भी नहीं है। वैष्णव का सेवा करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी का सेवा करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सेवा प्रणाम का चुकी बात चल रहा है, मैं कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि भक्त लोग जब भगवान को प्रणाम करने लगते हैं, स्पेशली कंग्रीगेशन लोग, तो लगता है जितना प्रार्थना और मंगलाचरण जानते हैं सब प्रणाम करने में लगा देते हैं, पूरा गीता का पाठ कर लेते हैं, नमो विष्णु पदाय और दो चार मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये सब कोई जरूरत नहीं है। और भक्त लोग बेचारा खड़ा है देख रहे हैं, कब उठेंगे तो मैं प्रणाम करूं, कब उठेंगे, तो पूरा गीता का पाठ करते जा रहे हैं वहां पर। सीधे एक पाठ करो, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी तिनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष सुन्न बाधि पश्चात देश। ये प्रणाम करने का मतलब क्या है कि भगवान का अटेंशन हमारे तरफ आए, भगवान समझे कि हम आ गए हैं यहां पर। यदि प्रभुपाद जी का नाम लेकर प्रणाम करेंगे तो मैं कहा करता हूं कि भगवान देखेंगे, अरे ये हमारे शुद्ध भक्त का नाम कहां से आ रहा है, कौन बोल रहा है। और कृष्ण का नाम लेकर प्रणाम करो तो कृष्ण, अरे हजार लोग ऐसे लेते रहे, मैं थक गया हूं, कौन जाने, मरने दो उसको, देखेंगे भी नहीं भगवान। तो सही में चाहते हो यदि भगवान का अटेंशन ग्रहण करना तो प्रभुपाद जी का प्रणति करो, बस सब हो गया। 100 रुपीज नोट है, सब उसी में है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र में सब मंत्र है, वैसे प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में सब है, कोई सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। मैं तंग आ गया कई एक दिन से देखते देखते, मैं कभी उठेगा तो मैं प्रणाम करूं। पूरा गीता का पाठ कर रहे हैं, जो जितना श्लोक याद हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं यदि भक्तों की सेवा की जाए, भक्तों की सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को जब यह आदेश मिला तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज मैं नित्यानंद प्रभु के भक्तों का और नित्यानंद प्रभु का मैं सेवा करूंगा। रघुनाथ दास गोस्वामी राजा के बेटे के समान थे अपने यहां के, तो उनके साथ में वह अकेले नहीं थे, साथ में बहुत लोग थे। सब लोगों को बुलाए और कहे जाओ, जितना भी इर्द गिर्द के गांव हैं सब जगह से दही चूड़ा, क्लेरिफाई बटर का क्या होगा, कंडेंस मिल्क का क्या हिंदी होगा, रबड़ी समझी ला इधर, कंडेंस मिल्क, रबड़ी लेकर के आओ, केला लेकर के आओ, सब मंगाया गया, जितना हो खरीद करके लाओ। अब जब ये फेस्टिवल का पता चला कि आज फेस्टिवल होने वाली है, देखो कथा सुनने कम लोग आएंगे लेकिन पता चलेगा कि मुफ्त प्रसाद मिल रहा है तो पूरा बॉम्बे खाने आ जाएगा, है कि नहीं। प्रसाद के लिए अट्रैक्शन है लोगों में, कथा में उतना अट्रैक्शन नहीं है, कीर्तन में नहीं, लेकिन प्रसाद में अट्रैक्शन है। और वही मुफ्त का चलता हो तो कहना ही क्या है, भंडारा कहीं चल रहा हो, भंडारा में कोई रोक टोक नहीं, कोई आकर खा सकता है। तो ये भंडारा हुआ था, रघुनाथ दास गोस्वामी भंडारा कर रहे थे तो सब ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण लोग तो बिना बुलाए अतिथि हो जाते हैं। भगवान का कृपा उन लोगों पर ऐसा है, ब्राह्मणों पर वैष्णवों पर, कि उन लोगों को इन्विटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। उन लोगों कान पसीज जाता है कि आज पूरी कहां बन रहा है, बुंदिया कहां बन रहा है, वो पहुंच जाएंगे वहां पर है? कितना भी दूर क्यों न हो पहुंच जाए, खाने के लिए पहुंच जाएंगे, जितना का भोजन न हो उसका 3 गुना भाड़ा देकर के जाएंगे, लेकिन पहुंच जरूर जाएंगे, है ना तमाल जी है? भंडारा कहीं जगह का भंडारा हो, कुछ भी हो, पहुंच जाएंगे ब्राह्मण लोग। तो बहुत ब्राह्मण लोग पहुंच गए तो निद्यान प्रभु देखा था बहुत लोग हैं, तो और मंगवाए और लेकर के आओ, फिर और लोग आ गए। तो आप लोग जानते हो जहां कहीं यज्ञ होता है, भंडारा होता है, कुछ बड़ा चीज ऐसा होता है, तो वहां पर वो बेचने वाले आ जाते हैं, कोई पॉपकॉर्न बेचने आएगा, कोई वो फुलवा बेचने आएगा, फूलने वाला बच्चों का, कोई कुछ लेकर के आएगा, है ना, अपना मेला लगाने आ जाते हैं। लेकिन उस समय के व्यापारी लोग बड़े बुद्धिमान थे, व्यापार उसी का करो जिसका चल रहा है। अब फुलौवा लेकर वहां क्या करोगे, रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़े फुलौवा खरीदने वाले हैं, या मिठाई क्या करोगे। अब दही चूड़ा का फेस्टिवल चल रहा था तो सब लोग दही चूड़ा अपने अपने घर से लेकर के आ गए वहां पर रघुनाथ बेचने के लिए। रघुनाथ दास ने आदेश दिया कि सबका खरीद लो, सबका दही चूड़ा खरीद लिया गया। वहां हजारों वैष्णव हो गए थे, कुछ लोग जो रघुनाथ दास गोस्वामी के नजदीकी लोग थे वो चबूतरे पर बैठे थे, कुछ लोग नीचे बैठे थे, कुछ लोग गंगा जी के तट पर बैठे थे, किसी को जगह नहीं था, गंगा जी में उतर गए थे। और इस प्रकार से रघुनाथदास को स्वामी मिट्टी का, पहले तो आजकल तो प्लास्टिक का बर्तन है, आजकल पेपर हो गया, प्लास्टिक से भी नीचे पेपर हो गया, पहले मिट्टी का बर्तन था, चांदी का, सोने का, तो सबको दो दो, क्या बोलते हैं, सिकोड़ा है? मिट्टी का क्या बोलते हैं असीम, मटका तो गोला होता है ना, वो खाने वाला, बिहार में सिकोड़ा बोलते हैं, नहीं ऐसे समझ लो थाली जैसा, दो दो दिए और एक में दही, एक में चूड़ा, एक में दही चूड़ा, दही को पहले कहीं पानी में फुलाया गया, कहीं दूध में फुलाया गया, सॉरी चूड़ा को, और दही ऊपर से कंडेंस मिल्क बनाना सब सबको बांटा गया, सब लोग खा रहे थे और सब दाई गौर हरि वो, सब लोग हरि ध्वनि करते हुए खा रहे थे, क्या आनंद था। ठीक वैसे ही भगवान जैसे जमुना किनारे ग्वाल बालों के साथ में पिकनिक मनाते थे, ये रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु कृपा से वहां पिकनिक का व्यवस्था किए थे, सब लोग पिकनिक मना रहे थे, वहां खा रहे थे। इस प्रकार से सब लोगों को खिलाए, और जो दुकान वाले बेचने वाले आए थे उनको भी खिलाया गया, यानी कि तुम लोग बेच दिया तो अपना माल थोड़ा खाया गया, उन लोगों को भी खिलाया गया, खूब भरपेट वो लोग खाए। बाद में नित्यानंद प्रभु स्वयं अपने हाथ से सबको परोस रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु को बुलाए तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सबके थाल से एक एक मुठा ले लेकर के, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के मुंह ठेलते थे और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु में, और दोनों खूब हंस रहे थे। सब लोग समझे क्यों हंस रहे हैं, इतना पागल हो गए क्या, नित्यानंद प्रभु तो ऐसे ही है, क्यों चैतन्य महाप्रभु को देख नहीं रहा था, लेकिन जो शुद्ध भक्त थे वो देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु को। अंत में नित्यानंद प्रभु आए, बैठे, सात अलग अलग सिकोड़े में उनको परसा गया, चैतन्य महाप्रभु के लिए परसा गया, वो खाए और अपना उच्छिष्ट रघुनाथ को दिए, तो रघुनाथ नित्यानंद प्रभु का उच्छिष्ट ग्रहण किए और अपने संगे साथियों में बांट कर करके, इस प्रकार से संक्षिप्त में आप लोगों को मैं इस जही चूड़ा का फेस्टिवल दे किया। हाँ, एक राघव पंडित थे, उनके यहां नित्यानंद प्रभु का इन्विटेशन था खाने के लिए, लेकिन बीच में राघव पंडित हमने घर में 56 भोग बनाए थे कि नित्यानंद प्रभु आज खाना खा हमारे यहां प्रसाद ग्रहण करने आएंगे, लेकिन उसी बीच में रघुनाथदास आ गए तो इनका दही चूड़ा का फेस्टिवल हो गया। तो राघव पंडित ने कहा फिर हमारा क्या होगा, तो नित्यानंद प्रभु का चिंता मत करो, हम ग्वाल बाल हैं, हम सुबह दोपहर शाम खाते हैं, हमेशा खा लेंगे, चिंता मत करो, अभी ये खा लेते हैं, तुम भी बैठो, तुम भी खाओ, और शाम को हम तुम्हारे घर में आकर खाएंगे। तो शाम को उधर जाकर नित्यानंद प्रभु खाए, भरपेट यहां भी खाए वहां खाए, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं था। भागवतम कहां है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी गलती नहीं है, मैं 8 बजे आ गया था, आप लोग लेट आए थे इसलिए कथा लेट हुई, मैं तैयारी किया था कि कोई बात नहीं। एक बात देखने को जरूर मिला होगा, आप लोगों को अनुभव हुआ होगा, जो निर्जल एकादशी किया होगा, बाद में पेट फर्स्ट क्लास साफ होता है ना, मतलब पानी वानी पीने के बाद में, पता नहीं कितने एक्सपीरियंस है, मुझे तो एक्सपीरियंस है, ये फास्टिंग करना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए भी सब प्रकार से। तो हम लोग भागवत महापुराण के 5वां स्कंध 20वां अध्याय और श्लोक 46 पढ़ेंगे, और इसके पहले 44-45 का भी मैं वर्णन करूंगा। तो आप लोग केवल श्लोक पढ़ लेते हैं, समय तो नहीं है। देवात्रिक्य मनुष्याणाम सरीसृप सवीरुधाम
सर्वजीव निकायानाम सूर्य आत्मा दृगीश्वरः देवर्त्र्यंगमनुष्याणाम सरीसृप सवीरुधाम सर्वजीवनिकायानाम सूर्यात्मा दृगीश्वरः।
एक आदमी पढ़ लीजिए। माता जी लोग देवा देवताओं त्रियक निम्न पशुओं मनुष्याणाम तथा मनुष्यों का सरीसृपा कीट तथा सर्प सवीरुधाम तथा पेड़ पौधे सर्वजीव निकायानाम समस्त जीव समूहों का सूर्य सूर्यदेव आत्मा आत्मा दृक् नेत्र के ईश्वर भगवान है। सूर्य लोक से सूर्यदेव द्वारा उष्मा तथा प्रकाश पर ही समस्त जीवात्माएं जिनमें देवता मनुष्य पशु पक्षी कीट रेंगने वाले जीव लताएं तथा वृक्ष सम्मिलित हैं निर्भर हैं। सूर्य की ही उपस्थिति में सभी प्राणी देख सकते हैं, इसलिए वह दृगीश्वर अर्थात दृष्टि के ईश्वर कहलाते हैं। तात्पर्य इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है, सूर्य आत्मा आत्मनोपास्यस्य। इस ब्रह्मांड में सूर्य ही समस्त प्राणियों का जीवन और आत्मा है, इसलिए वह उपास्य है। हम सूर्य देव की उपासना गायत्री मंत्र के जप ओम भूर्व स्वस्तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि द्वारा करते हैं। सूर्य इस ब्रह्मांड का उसी प्रकार जीवन और आत्मा है जिस प्रकार भगवान इस समस्त सृष्टि के हैं। हमें ज्ञात है कि बैराज हिरण गर्भ ने सूर्य नामक विशाल भौतिक गोलक में प्रवेश किया। अतः तथाकथित वैज्ञानिकों का यह कथन है कि वहां कोई नहीं वास करता है, यह असत्य है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य देव को गीता का उपदेश दिया, इवम विवस्व तेजोगम प्रोक्तवानहम अभ्ययम्। अतः सूर्य रिक्त नहीं है, इसमें जीवात्माएं निवास करती है और इनका प्रधान विग्रह बैराज अथवा विवस्वान है। पृथ्वी तथा सूर्य में यही अंतर है कि सूर्य अग्निमय लोक हैं, किंतु वहां के प्राणी अनुकूल शरीर धारण करके बिना कठिनाई के निवास कर सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के अंतर्गत ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण शीर्षक विश्वे अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। इसके पहले का श्लोक है सूर्य 44। सूर्य देव बैराज अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। ब्रह्मांड को सृष्टि के समय ब्रह्मांड के अंडे के भीतर प्रवेश करने के कारण मार्तंड भी कहलाते हैं। हिरणगर्भ ब्रह्मा से भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण वे हिरणगर्भ भी कहलाते हैं। 45। सूर्येण ही विभयन्ते दिशं खं धौमहीभिधां स्वर्ग अपवर्गो नरका रसोकांसी च सर्वशः। हे राजन, सूर्यदेव तथा सूर्यलोक ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं को विभाजित करते हैं। सूर्य के ही कारण हम समझ पाते हैं कि आकाश स्वर्ग स्वर्ग लोक यह संसार तथा पाताल लोक क्या है। सूर्य के ही कारण हम जानते हैं कि भोग या मोक्ष के स्थान कौन कौन से हैं और कौन से नरक तथा अतल आदि लोक हैं। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं। गीता में भगवान कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां, भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं। सुहृद का मतलब होता है जो सबके योग क्षेम का भरण करे। हम लोग आनंद भोगना चाहते थे, भगवान से रिवोल्ट किए आनंद भोगने के लिए, तो भगवान ठीक वैसे ही पिता के समान है जिसके पुत्र उनसे रिवोल्ट करते हैं, लेकिन पिता पिता है, उसकी आसक्ति अपने पुत्र के प्रति है, अतः बेटे के लिए नया घर व्यवस्था कर देता है और उसके सुख सुविधा का सब वस्तु वहां पर स्थापित कर देता है ताकि बेटे के कोई दुख न होने पावे। और रास्ता भी दिखाता है, बेटा संतोष नहीं होगा, दुखी रहोगे तो बाद में आ सकते हैं मेरे पास। ठीक वैसे ही सुहृद पिता के समान भगवान, जो असली सुहृद पिता भगवान हैं, ये सब पिता लोग नकली सुहृद हैं, लेकिन कृष्ण असली सुहृद हैं। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह, मैं इस जगत का पिता हूं। तो भगवान जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के आनंद के लिए व्यवस्था किए। दो प्रकार का विज्ञान है, एक कहलाता है कला विज्ञान और एक कहलाता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान वस्तुओं की व्यवस्था करता है और कला विज्ञान उन वस्तुओं का प्रयोग कर करके कैसे आनंद में जीवन भोगा जाए उसका व्यवस्था करता है। आनंद इसे कह सकते हैं आर्ट एंड साइंस। आज 99% लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं। कितने साइंस के स्टूडेंट बताओ, हाथ उठाओ। साइंस वाले कितने हैं देखो, आर्ट वाले कितने उठाओ, हाथ उठाओ। बहुत कम, देखो यही देख सकते हो। हम लोग जब पढ़ते थे तो जो साइंस पढ़ा था छाती तान कर चलता, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। जो आर्ट था तो बेचारा, तो आर्ट पढ़ता है, बुद्धू नंबर एक है, तो आर्ट पढ़ रहा है, आर्ट लिया है। लेकिन ओरिजिनलिटी हम भूल जाते हैं। जो साइंस है वो केवल वस्तुओं की व्यवस्था कर सकती है, आनंद नहीं दे सकती है। आनंद आता है कला से। साइंस में है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, आर्ट में है ज्योग्राफी हिस्ट्री और क्या है सोशल साइंस इकोनॉमिक्स, ना ना फिजिक्स तो साइंस में हो गया ना, पॉलिटिक्स। तो ज्योग्राफी हिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी वो भी उसमें है। अब देखिए ये जो सो कॉल्ड साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंसिस्ट लोग, वो आर्ट को देखकर इतने थक गए कि आर्ट को वे हीन समझने लगे। जैसे इतिहास को कहते हैं मैथोलॉजी है, यही कहते हैं ना, अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, कहते हैं इतिहास मैथोलॉजी है। और भारत में भी लोग कहते हैं अरे ये मैथोलॉजी शास्त्र में ऐसा बताया गया है। अरे मूर्ख कहीं का, मैथोलॉजी कैसे हो सकता है, इतिहास का मतलब इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी, ये बीती हुई घटना है इतिहास, उसको भूल चुके हैं। भूगोल, ज्योग्राफी, ये साइंसिस्ट लोग जब विश्वास नहीं करते हैं इसीलिए चंद्रमा पर जाने का प्रयास करते हैं, वहां जाने का इन्वेंशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये सब इस विज्ञान में दिया हुआ है, वही तो हम आगे पढ़ेंगे, सूर्य का विज्ञान, ये सब दिया हुआ है, किसकी दूरी कितनी है, कहां पर है, नापो, फिर उसने पेट्रोल भरो, जा सकते वहां से जा सको, व्यवस्था करो, इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है, सब दिया हुआ है, तो भूगोल जानेंगे नहीं। अब भूशास्त्र यदि वे जानते, एस्ट्रोनॉमी जानते, या जैसे अभी डेली पेपर में आप पढ़ रहे हैं, टीवी पर आ रहा है कि केदारनाथ में इतना बड़ा तांडव हो गया, कितने लोग मर गए, विज्ञान ने क्या किया, डैम बांधा, कहां पर, गंगा में सब जगह डैम बांधा गया ना, सबसे बड़ा टिहरी डैम। यदि किसी भूगोल शास्त्र वाले से आप पूछते, वो बोलता है टिहरी मत मान लो, वो बंद को वो बे ऑफ बंगाल में बांधो, तो पानी बचाना है ना, बंगाल में बांधो, क्योंकि वहां बांधोगे गंगा का पानी जब आएगा तो टिहरी बांध टूटेगा तो दिल्ली तक सब चौपट हो जाएगा, लेकिन गंगा में बांध टूटेगा तो समुद्र में जाएगा पानी, अब समुद्र में पानी जाएगा तो कितना भी पानी आए समुद्र इतना महान है कि वहां पर बाढ़ नहीं आएगा। तो आज भौगोलिक व्यक्ति से पूछो, जितना गंगा में बांध बांधे गए हैं साइंसिस्ट लोगों के द्वारा, वह प्रलय का नोटिस है। पहला नंबर, गंगा जी को कोई बांध नहीं सकता, साइंसिस्ट का उनके बाप भी नहीं बांध सकते हैं। गंगा जी का शुरू में ही कंडीशन था भागीरथी से कि भाई तुम मुझे रोकोगे कैसे, मुझ में इतना प्रवाह है, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए तो ब्रह्मा जी कमंडलों में रख लिए, अरे फिर वहीं पर रह जाएगी, आगे बढ़ना है तो कहा अब कहां रोकेंगे, तो भगवान शिव अपने जटा में रख लिए और वहां से छोटा सा निकली। तो गंगा जी का फर्स्ट कंडीशन है कि तुम लोग नहीं रोक सकते हो, रोकने के लिए भगवान शिव को आना पड़ेगा, ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा। अरे मूर्ख साइंसिस्ट लोग, गवर्नमेंट लोग रोक रहे हैं आज, गंगा जी को रोक रहे हैं तो मरो फिर, क्यों रोका, क्यों बांध बनाया, सिंचाई के लिए। अरे उनके पानी से जितने लोग जिए नहीं होंगे उनके पानी से उससे ज्यादा कहीं मर गए होंगे, गिनो, जब से टिहरी डैम बंधा हुआ है उस दिन से आज से कितने लोग जिए होंगे, और बांध टूटा तो बूम, टूटा नहीं वो खोलना पड़ा, नहीं खोलते तो और खतरनाक होता है। वैसे ही जमुना जी के पानी खोल दिया गया, दिल्ली को नाके दम पहुंचा दिया। तो यदि कला को जानते तो व्यक्ति दुखी नहीं होते। पहले इतनी ऐसी कला थी, कहां पर पानी है व्यक्ति बता देगा, आजकल कहां पानी है पता लगाने, ढूंढू 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 खोदो, साइंस का परमिशन, वहां साइंसिफिक रिसर्च, अपना ये तलाशरी फार्म है, पूरा जगह पर खूब खुदाई किया, लाखों रुपया खर्चा किया, कहीं पानी नहीं निकला। और पहले पहले कला वाले तो बता देंगे कि भाई कहां है, बल्कि अपना ये संदीपनी कृष्ण एक अपने गांव का आदमी लेकर आया था, वो सब देखा कहां यहां पानी है ही नहीं, क्यों पैसा खर्चा करते, मत करो, ये है कला। किसी का घर है, घर में बढ़िया शांति है, दुख है, वो बाबा आएगा कहेगा इसमें हड्डी है, यहां पर मैं अपने आंख से दिखाऊं, हमारे यहां ऐसा होता है, हड्डी है यहां पर, खोदा गया सही हड्डी निकला, हड्डी फेंक दो शांति। अब वैज्ञानिक लोग इसमें और कुछ बनाएंगे, वस्तु शास्त्र था, राग रागनी एक कला है, राग रागनी, एक कोई राग छेड़ दे तो वर्षा होने लगे, राग छेड़ दे पत्थर पिघल जाए, रूंगटे खड़े हो जाएंगे। आजकल भी क्लासिकल जब भजन होता है तो कितना अच्छा लगता है। तो ये कला है वो शांति के लिए है। तो ये जो पांचवा स्कंध है इसमें जो वर्णन किया जाए, एस्ट्रोनॉमी है, ये भूशास्त्र है, भूगोल है, ये भूगोल का, ये शांति के लिए, इसलिए भागवतम में इसका वर्णन किया गया है। अब इस भूगोल में से ये तीन श्लोक है इसमें भगवान सूर्य का वर्णन किया जाता है। खैर मैं भूगोल का वर्णन नहीं करूंगा, आई मीन कला का वर्णन नहीं करूंगा। कई एक प्रकार की कला है, भूगोल उसमें से एक है। सबका अपना अपना स्थान है, वस्तु शास्त्र है, काम कई चीज है। नहीं, यहां पर सूर्य का वर्णन किया जा रहा है। सूर्य है कौन? द्वादश आदित्य हैं। सूर्य भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, उन्हें नारायण भी कहा जाता है, ईश्वर भी। यहां दृगीश्वर कहा गया है, सूर्य नारायण कहा जाता है। वे अपने उनका अपना लोक है, जो वहां के देवता हैं, हालांकि बदलते रहते हैं, अभी जो है वे स्वान हैं। वे एक रथ पर चलते हैं जिनमें सात अश्व घोड़े लगे होते हैं, और उनके सारथी जो हैं वो अरुण हैं। अरुण और गरुण विनिता के दो पुत्र थे, तो गरुण भगवान विष्णु के सारथी हुए और अरुण भगवान सूर्य के सारथी हुए। जितने लोक लोकांतर हैं, समस्त लोक लोकांतरों में सूर्य हैं। यहां जो है वह द्वादश आदित्य कहलाते हैं, उसमें से एक आदित्य का प्रकाश हम लोग प्राप्त करते हैं। यहां पर जो सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में, उनके कर्म के अनुसार उनका नामकरण यहां पर दिया गया है। जैसे 44 श्लोक में कहा गया है, सूर्यदेव वैराज, अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। ब्रह्मांड को सृष्टि के समय ब्रह्मांड के अंड के भीतर प्रवेश करने के कारण मारतंड भी कहलाते हैं। हिरण गर्भ ब्रह्मा के भौतिक शरीर प्राप्त करने के का ब्रह्मांड से भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण वे हिरण गर्भ भी कहलाते हैं। तो ये तो उनका नामांकन हुआ। अब उनसे क्या होता है हम लोग क्या जानते हैं? कहते हैं सूर्येण ही विभज्यन्ते दिशः, सूर्य से दिशा का विभाजन होता है। पूरब कितने दिशा है? साइंस वाले जानते हैं। अच्छा, क्या क्या चार दिशा? चार दिशा क्या है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब का पहचान क्या है? सब लोग जानते हैं ना। और पश्चिम का पहचान क्या है? जहां पर अस्त होते हैं। अब बताओ दक्षिण का पहचान क्या है? साइंस वाले बताओ। वो तो हम लोग मान लिए हैं ना। ये सूर्य उदित होते हैं, है? तो यदि सूर्य की तरफ फेस किया जाए तो कहते हैं कि जो राइट साइड है वो दक्षिण है और लेफ्ट जो है वो उत्तर है। लेकिन भी राघव गोस्वामी कहते हैं ये मापदंड नहीं है। जैसे सूर्य जब उगते हैं तो उसे पूरब कहा जाता है, और सूर्य जिस दिशा में डूबते हैं वो पश्चिम कहलाता है। लेकिन दोपहर में सिर पर सूर्य होंगे लेकिन वो दक्षिण तरफ झुके होंगे, वो कहलाता है दक्षिण। उत्तर में भार है इसलिए हमेशा सूर्य दक्षिण तरफ झुके रहते हैं। उत्तरायण में जाते हैं लेकिन दक्षिण तरफ ही झुके रहते हैं। चंद्रमा जो है वो उत्तर तरफ झुके रहते हैं। तो यहां पर दिशाओं का पहचान करते हैं। सूर्येण ही मतलब निश्चय ही, विभज्यन्ते दिशा, दिशाओं का विभाजन करने वाला कौन है? सूर्य। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में पता चलता है कैसे? सूर्य से। साइंस में कैंपस से हम पता लगा लेंगे, कैंपस से पता लगा लेंगे, अरे मूर्ख, वो कैंपस भी बना हुआ है सूर्य के आधार पर ही है ना, वो कैंपस भी बना हुआ है सूर्य के आधार पर। उसके बाद खम धौम मही विदा, और क्या पता चलता है सूर्य से? खम, आकाश कहां है? आकाश का परिचय सूर्य से, क्योंकि सूर्य कहां आते हैं? आकाश में आते हैं। उसके बाद ये भैया ये तो खत्म कर दिया है, ये हिंदी में तो ट्रांस ये शब्दों को खा गया है। बीबीटी वाले को यहां पर है बताना चाहिए। राघव इस श्लोक को देखो, दिशम के बाद खम दिया है, खम के बाद धौ मही भिधा, तीनों काट डाला, स्वर को भी काट डाला, अपवर्क्स दिया गया। कौन अनुवाद किया है? आप किए हो? चेक करा, बीबीटी वाले क्या करते हैं बताओ, उन लोगों को लिखो, नोट बनाओ, आंतरिक को बोलो, करेक्शन होना चाहिए। तो पृथ्वी का, स्वर का, इन सब का जो विभाजन है, स्वर कहां पर है, पृथ्वी कहां पर है, इन आकाश कहां है, इसका विभाजन जो होता है सूर्य से। स्वर्ग अपवर्गो, यहां तक कि वैकुंठ, यानी भौतिक संसार जो है वह प्रकाशित होता है सूर्य से, और जहां सूर्य का प्रकाश बंद होता है वहां से वैकुंठ जगत शुरू होता है। तो वही क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ बॉर्डर लाइन क्या बोलते हैं, एलओसी क्या है, चाइना इंडिया का बॉर्डर क्या बोलते हैं, एलओसी ना, तो ये सूर्य एलओसी है। ये तो पता चलता है पृथ्वी कहां है, आकाश क्या है, स्वर्ग कहां है, नरक कहां है, रसातल कहां है, इन सब का पता जो है वो सूर्य से चलता है। तो सूर्य कितने इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूर्य भगवान के क्या है, आंख, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, सकल ग्रहाणा, भगवान सूर्य रूपी चक्षु से, राजा समस्त सुरमूर्ति रसे सतेजा जस्य अज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्रो, जस अज्ञा जिसके अज्ञा से संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो सूर्य भागवत में अनंत तीसरे स्कंद में वर्णन किया कि सूर्य और चंद्र भगवान के दो आंख हैं जिनसे भगवान देखते हैं। जो भी हम कार्यकलाप करते हैं उन कार्यकलापों के हमारे साक्षी भी सूर्य हैं। जब जमदूत और विष्णु दूतों में वार्ता हो रही थी तो विष्णु दूत का, भैया तू तो अपने को जमराज का दूत बताते हो, जमराज जी तो धर्मराज है, तो धर्मराज के दूत हो तो धर्मराज तुमको धर्म बताए होंगे, बताओ धर्म क्या है। तो जमदूत लोग धर्म का निरूपण किए कि वेद में जो कुछ वर्णन है वो धर्म है और वेद के विरुद्ध जितना है वो अधर्म है। तो पूछे ठीक है, जो अधर्म करता है, ये संसार में जितने लोग हैं सबको एक समान दंड दिया था कि दंड में अलग अलग विभाग भी है? कहते हैं विभाग भी है। तो निर्णय कौन करता है? तो हमारे सरकार करते हैं, जमराज जी करते हैं। कैसे करते हैं? तो बहुत साक्षी लोग हैं और उन साक्षियों में से सूर्य का नाम पहले है। सूर्य, चंद्रमा, दस दिशाएं, वायु, ये सब साक्षी हैं। तो सूर्य सबसे हैं, हमारे समस्त कार्यकलापों को सूर्य देख रहे हैं। तो ये तो नॉलेज के संबंध में बतलाया गया, सूर्य से क्या ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे शरीर पर क्या उसका असर पड़ता है वह इस श्लोक में बताया करते हैं। तो जीवन धारण करते हैं चाहे देवता हो, चाहे निम्न पशु हो, चाहे मनुष्य हो, हम सब लोग सूर्य से हैं। आंख रहे लेकिन सूरज न रहे तो कोई दिखाई पड़ेगा, हाथ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कोई नहीं, नहीं नहीं हम तो ट्यूबलाइट लाकर देख लेंगे। अरे ट्यूबलाइट में लाइट भी सूर्य से आता है, कोई भी लाइट है जुगनू का प्रकाश ही क्यों ना हो सब सूर्य से आते हैं। हमारा जो शरीर है इसमें दो प्रोमिनेंट नाड़ियां हैं, एक कहलाती है सूर्य नाड़ी और दूसरी कहलाती है चंद्र नाड़ी। उन दोनों का शुरुआत ये नाक से है, अन्य सब नाड़ियां अंदर है, लेकिन सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो हैं वो बाहर से आते हैं। यहां से अपना जो नाक है क्रॉस है, यहां दिखाई पड़ता है लेकिन ऊपर आकर क्रॉस है। जो लेफ्ट है वो सूर्य नाड़ी है क्योंकि क्रॉस हो जाता है राइट में, और जो राइट है वो चंद्र नाड़ी है। एक साथ में ये दोनों नाक काम नहीं करेंगे, ये शिफ्ट में काम करते हैं। कोई बोले कैसे आप जानते हैं? आप सब लोग सोते हो रात को, करवट बदलते हो, करवट इधर से उधर, उधर से इधर, उस समय कौन बदलने आता है? आप बदलते हो क्या? करवट कौन बदलता है हम लोगों का पता है? ये दो नाड़ियां बदलती हैं। हरदास कहां चला गया? एक करवट बदल दिया अभी से। ये दो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हैं वो बदलती है। मान लो आप सो रहे हो तो ध्यान रखना, यदि आप लेफ्ट में सो, राइट में सो रहे हो तो ये सर्टेन है कि आपका लेफ्ट नोज काम कर रहा है, नहीं तो आप अनइजी फील करोगे, ऑटोमेटिकली इधर हो जाओगे। मान लो आप राइट में सो रहे हो, राइट साइड में, और यदि शिफ्ट बदला लेफ्ट का तो अपने आप आपका करवट बदल जाएगा। शिफ्ट बदलते हैं, नाड़ी का शिफ्ट बदला क्या करवट बदल जाएगा। ये है कला विज्ञान, साइंस नहीं, ये कला विज्ञान है जो कि शास्त्रों में वर्णन किया। आगे के भगवद गीता में भगवान बताए हैं इस बात को, अपाना प्राण छठवां अध्याय में है ना, प्राणापान समान ध्यान जो है 18वें अध्याय भी है इसका वर्णन। एनीवे, दो प्रकार के लोग होते हैं जिनका एक साथ में बहुत कम लोगों का दोनों नाक चलता है, प्राय एक ही चलता है। जिसका ज्यादा सूर्य नाड़ी चलता है वो साइंसिस्ट होता है, गर्म दिमाग वाला होता है, और जिसका ज्यादा चंद्र नाड़ी चलता है वो कभी होता है, इमेजिन करता है बहुत कुछ चीज, लिव्स इन इमेजिनेशन, चंद्र नाड़ी वाले। इसीलिए आप देखे होंगे जो साइंसिस्ट होते हैं उनको कला से प्रेम होता है, वो गायक भी होते हैं, अच्छा गाते हैं साइंसिस्ट लोग, के अपने को प्रसन्न करने, जल रहे हैं ना तो ठंडक पानी चाहिए, अपना रसराज प्रभु को पूछना, वो कभी कभी बाथरूम में गाता रहता है उधर है? उनको शांति चाहिए तो चंद्र नाड़ी चाहिए, और जिसका केवल सूर्य नाड़ी चल रहा है तो बड़ा खतरनाक परिस्थिति में है, जल रहा है। भूख लगता हो तो आप चेक कर सकते हो कि आपका राइट साइड का नहीं लेफ्ट साइड का नाड़ी चल रहा है, यानी सूर्य नाड़ी चल रहा है तो भूख लगता है। हम जो भी खा रहे हैं वो कैसे पचता है? सूर्य से, सूर्य ना हो तो नहीं पच पाएगा। ये समझ लो डेली हम पेशाब पैखाना करते हैं, इतना सा सामान सड़ जाता है, हम लोग जी रहे हैं अभी तक इतना पेशाब पैखाना करने के बाद भी, वो किनकी कृपा है? बोलो हुंकारी तो भरो, सूरज वो तपाते हैं ना। हम लोग जन्माष्टमी में बंद कर देते हैं ऊपर पूरा, एक दो हफ्ते के बाद में पंडाल खुलता है तो अपना बेल का झाड़ है, सब पत्ते गिरने लगते हैं, मुरझा जाते हैं कि सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। प्रभुपाद जी एक बार कहे, डिवोटी दे आस्क प्रभुपाद वेयर इज हेल,
प्रभुपाद सर यू कैन गो टू लंडन एंड एक्सपीरियंस द हेल,
क्योंकि वहां सूर्य नहीं होते हैं, बहुत कम सूर्य दिखाई पड़ते हैं।
तो सूर्य से सब लोग जीवन धारण करते हैं, सूर्य से सोना, सूर्य से जगना।
सूर्य देव को अर्घ लोग देते थे ऐसे ही नहीं, इसके पीछे इतिहास है, इसके पीछे विज्ञान है।
खैर हम उन सब का बात ज्यादा नहीं करेंगे, मुझे भी फ्लाइट पकड़ना है, 9:30 बजने को आ गया है। तो यहां पर जो बताया गया है कि सूर्य सबके ईश्वर हैं, सर्वजीव निकाया नाम, समस्त प्राणियों के वे सबके, समस्त समूहों के वे जीवन है। सूर्य आत्मा, वे प्राण है, सबके आत्मा है। और दृगेश्वर, उनके चलते हैं किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, दृग ईश्वर कहा गया है, आंख ईश्वर।
तो कोई कह सकता है अरे जो अंधे लोग थे वो कैसे देख लेते हैं, वो भी सूर्य के चलते।
ये सूर्य केवल बाहर ही नहीं, अंदर भी हैं, हमारे पेट में स्थित हैं, जठराग्नि के रूप में उनका ही प्रतिनिधि है जठराग्नि। जब खाते हैं जब पचता है, एनीवे, तो सूर्य की बड़ी महिमा है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं और उन्होंने कहा कि हम गायत्री मंत्र जपते हैं, उसमें से जो प्रथम लाइन है वो क्या है, सूर्य की उपासना है। ओम भूर्भुव सः सवितुः वर्णयः भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, सूर्य की उपासना है। तो सूर्य की उपासना लोग करते थे। अब सूर्य के संबंध में सूर्य की गति इत्यादि का वर्णन आगे के अध्याय में किया जाएगा, तो मैं यही समाप्त करता हूं। ऐसे मुझे पता नहीं था कि आज चूड़ादाई फेस्टिवल है, नहीं तो बड़ा, ये दोनों श्लोक, ये श्लोक उसके पहले का श्लोक और उसके पहले का, तीनों श्लोक बड़ा ही सुंदर श्लोक है। सब श्लोक अच्छे हैं, लेकिन मैं सोचा था कि एक घंटा बोलेंगे, लेकिन चूड़ादाई का अनाउंसमेंट सुबह में सुना था, चलो उसको बात कर लेते हैं। अच्छा, किसी भक्त ने ला करके मुझे किताब दिया था, कौन भक्त था वो, क्लास में तो नहीं आया है मैं जानता हूं, किसी को याद है? ये लाइब्रेरी से आया था, कौन लाया था? हैं, बुक स्टॉल में वो लोग एकादशी कर रहे हैं, अभी तक पारण कर रहे हैं एकादशी का, कह ले देकर दे दे रहा हूं उसको, लाइब्रेरियन को बोल रहा है प्रभु जी हमारे नाम पर चढ़ा है। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन, एनी बढ़िया? हाँ, ए माइक दो भाई, कहां माइक वाला गया, सो गया अभी? हाँ, चंद्रमा से यही बात है, इतना तो याद हो जाएगा ना, रहते रहते पूर्व किधर है, एक दिन देख लिया, एक दिन देख लिया, रात्रि से पता नहीं नेक्स्ट डे पता चल जाएगा। अब यहां पर आपको बताना चाहता हूं पूर्व किधर है, ठाकुर जी उधर तरफ है। हाँ, प्राय मंदिरों में ठाकुर जी को पूर्व तरफ दृष्टि दिखाया था, पुत्र है उत्तर में, वही पता चल सकता है। ठाकुर जी सूरज के भी बाप हैं, उन पर कोई तकलीफ नहीं, वो कदर नहीं देखें तो भी ठीक है, वृंदावन दक्षिण देख रहे हैं तो थोड़ा पूर्व मानेंगे। सुबह से ही इसका गणना होता है, सुबह देख लीजिए, रात को नहीं देख पाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि रात्रि को कैसे पता चलेगा पूर्व किधर है, तो रहते तो पता चलेगा भाई पूर्व सूर्य किधर होते हैं, जब वहां पर रह रहे कुछ दिन थे। अब पहले बार आया तो कैंपस अगर रखा अपने पास पता चल जाएगा पूर्व किधर है, वो भी सूर्य का प्रतिनिधि है वहां पर। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन, और कोई प्रश्न? विष्णु।
हरे कृष्णा, भगवान ने जीव का कल्याण और आनंद के लिए सभी व्यवस्था किया है, फिर भी जीव को तृप्ति नहीं है, जीव सुखी नहीं है, क्यों?
इधर करो। हाँ, जीव सुखी कैसे होगा? मछली को पानी से बाहर निकालकर उसे बासमती चावल खिलाओ चाहे स्वीट राइस खिलाओ, मछली सुखी होगी? तो पानी चाहिए ना, तो जीव तब सुखी होगा जब उसका संबंध भगवान से आएगा। जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो आर दुख नाय। जब यह विश्वास हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं तब फिर कोई दुख नहीं रह जाएगा। इसके लिए साधु संगति की जरूरत है। यह सब वस्तुएं साधन है, भगवान व्यवस्था किए हैं, लेकिन हम उसका मिसयूज कर रहे हैं डैम बना कर करके। कैसे सुखी होंगे? प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति हमारी मां है, वो चाहती है कि हम लोग खुश रहें, लेकिन मां पर डंडा मारो मां खुश रहेगी? वो खुश नहीं था, कैसे खुश रहोगे? अभी बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। अरे मूर्ख कहे, ग्लोबल कौन लाया? कौन लाया ग्लोबल वार्मिंग? हम लोग इतना बड़ा बड़ा बम बना करके क्या क्या कर करके एक्सप्लॉयटेशन कर कर करके। नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग दुख क्रिएट कर रहे हैं, भगवान नहीं किए, भगवान तो व्यवस्था किए। ठीक है, और कोई प्रश्न? चलो भाई इधर फोन दो।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जो अपने डेमी गॉड्स है प्रभु जी, जो आपने की हायर कॉन्शियसनेस है उनको, तो ऐसा क्यों नहीं चाहते कि मैं भगवत धाम चला जाऊं? ये इसमें कुछ नहीं पड़ा है, ये जो पद मिला है
वो चाहते हैं बेचारे, इसलिए प्राय यहां पर आते रहते हैं। वो कामना भी करते हैं कि मैं पृथ्वी लोक पर हम लोग का जन्म, उसके इसी अध्याय में पहले वर्णन किया हुआ है। वो कामना है उनकी, वो चाहते हैं, लेकिन करें क्या, उन्हें भोग योनि मिल गई है, भजन वहां नहीं कर पाते। इनकी इच्छा होती है और आते भी हैं भजन करने के लिए।
और प्रभु जी, वो आपने एक ही सूर्य ब्रह्मांड में, तो अलग अलग
अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग सूर्य हैं,
और ये जो सूर्यलोक चंद्रलोक है उसके अलग अलग टाइमिंग होगा ना, वो सूर्य दिखने का और सूर्य
पहले यहां का जाना बाद में उधर का जानना, पहले यहां का जानो ना, जितना है उसका वर्णन नहीं किया गया। उन लोगों को वरी होने दो, हमको क्या, अपना जहां है उतना गौरी करें। माइक माइक उधर दो।
सो मुझे पूछना है कि ऐसा बोला जाता है कि ऑल द ईविल्स जो है वो अधर्म होता है, अधर्म होता है।
हाँ
है ना, तो अगर वो अधर्म होता है तो भगवान वो पाथ लाता ही क्यों है सृष्टि में, कि अधर्म का भी एक पाथ है? भगवान ऑब्वियसली उन सबसे तो वो ज्यादा पावरफुल है, तो वो आती क्यों है सृष्टि में ये चीज?
आप तो वैसे ही प्रश्न कर रहे हो कि जेल में वही जाता है जो क्रिमिनल होता है, तो गवर्नमेंट जेल बनाती ही क्यों है? क्योंकि भगवान हमारे इंडिपेंडेंस पर रोक नहीं लगाते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। अब उसका यूज और मिसयूज, नाइफ है किसी का गला काट सकते हो या एप्पल भी काट सकते हो, सब्जी काट सकते हो, तो सब्जी काटना उसका सदुपयोग है, या किसी गला काटना वो दुरुपयोग है।
अच्छा, तो मतलब अगर आप ईविल को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक ब्यूटिफुल चीज निकलेगी।
पहले गुड थिंग को अंडरस्टैंड करो तो तरफ जाओगे ही नहीं। ठीक है, भक्ति सबसे गुड थिंग है, भक्ति करोगे तो इविल आएगा नहीं, डरेगा। इविल को अंडरस्टैंड करने जाओगे तो फंस जाओगे उसमें, रिस्क ले रहे हो। और कोई प्रश्न? हाँ राघव प्रभु, टेल मी। यस माइक दो भाई, ए माइक दो, माइक पकड़ो, मत जाओ, जो पीछे पीछे राघव को दो, बेचारा बोलते बोलते थक गया, आप कुछ बोलना चाहता है।
हरे कृष्ण प्रभु जी,
लो
ये ज्योतिष के ऊपर नाड़ी से भी करती है, ये चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी से भी ज्योतिष का आकलन करते हैं, क्या ये ठीक है प्रभु जी?
मैं ज्योतिष हूं नहीं, मैं जानता नहीं हूं इसके विषय में, तो क्यों मैं उस पर स्पेकुलेट करूं? ज्योतिष से पूछे तो अच्छा होगा। ओके राघव।
हरे कृष्ण प्रभु, यू एक्सप्लेन दैट द प्रीचर्स दे शुड नॉट गो अलोन टू प्रीच, I was wondering if this is a rule for like less advanced preachers, because Srila Prabhupada, he went alone and he also sent some of his disciples like Srila Gogovinda Maharaj to preach alone for many years.
First of all, Prabhupada was never alone. Prabhupada always had his Guru Maharaj with him. Prabhupada was never alone. He had his Guru Maharaj with him. And he had Krishna with him, his pure devotee. Let us not imitate him. We should do what Prabhupada had told. He told very clearly in Chaitanya Charitamrita that all the preachers of Krishna consciousness movement should go in group. He was talking about Harinam party, of course. But here also, he wrote a letter to Tejas Prabhu, one of the letter, about membership, that no membership preacher should go alone. They should go in a pair. They should go together. Only for safety measure, nothing else. Only for safety. Maya is very strong. We can be tempted anywhere. But if somebody is there to pull us out, that's only to assist us, to help us. Okay? Alright, Mataji? Alright, so we stop here. Grantra Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.